अब वाजे हो कि जहाँ तक हमने सूरतुल मोमिनून की आयत ममदूहा बाला के मौजज़ा होने की निस्बत लिखना था वो सब हम लिख चुके और बखूबी साबित कर चुके कि सूरह मौसूफा की इब्तिदा में मोमिन के वजूद रूहानी के छः मरातब करार दिए हैं और मरतबा शिशुम खल्के आखिर का रखा है। यही मरातब सित्ता सूरह मौसूफा बाला में जिस्मानी पैदाइश के बारे में बात ज़िक्र पैदाइश रूहानी बयान फरमाए गए हैं और ये एक इल्मी एजाज़ है और ये इल्मी नुक्ता कुरान शरीफ से पहले किसी किताब में मस्कूर नहीं है। बस इन आयात का आखिरी हिस्सा यानी फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन अलमोमिनून 15 बिलाशुबा एक इल्मी मौजज़े की जड़ है क्योंकि वो एक एजाजी मौका पर चस्पा किया गया है और इंसान के लिए ये बात मुमकिन नहीं कि अपने बयान में ऐसी एजाजी सूरत पैदा करे और फिर इस पर आयत फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन चस्पा करे। और अगर कोई कहे कि इस पर क्या दलील है कि आयात मस्कूरा बाला में जो मुकाबला इंसान के मरातब पैदाइश रूहानी और पैदाइश जिस्मानी में दिखलाया गया है वो इल्मी मौजज़ा है, तो इसका जवाब ये है कि मौजज़ा उसको कहते हैं कि कोई इंसान इसके मिसल बनाने पर कादिर ना हो सके या गुज़िश्ता ज़माने में कादिर ना हो सका हो और ना बाद में कादिर होने का सबूत हो। बस हम दावा से कहते हैं कि ये बयान इंसानी पैदाइश की दकीक फ़िलासफ़ी का जो कुरान शरीफ में मुंदर्ज है ये एक ऐसा बेमिसल मानिंद बयान है कि इसकी नज़ीर पहले इससे किसी किताब में नहीं पाई जाती। ना इस ज़माने में हमने सुना कि किसी ऐसे शख्स को जो कुरान शरीफ का इल्म नहीं रखता इस फ़लासफ़ी के बयान करने में कुरान शरीफ से तवारुद हुआ हो, और जबकि कुरान शरीफ अपने जमीय मारिफ और निशानों और फसाहत व बलागत के लिहाज से मौजज़ा होने का दावा करता है और ये आयात कुरान शरीफ का एक हिस्सा हैं जो दावा एजाज़ में दाखिल है, बस इसका बेमिसल मानिंद साबित होना बावजूद दावा एजाज़ और तलब मुकाबला के बिलाशुबा मौजज़ा है। और मुतरिस के बकिया एतराज़ात का जवाब ज़ैल में लिखा जाता है। कौलहु अफत दयारो महलोहा व मकामोहा एक पुराने शायर का मिसरा है, क्या किसी नबी को कभी ऐसी वही हुई जिसके अल्फाज हरफन हरफन वही हों जो उस नबी से पहले किसी आदमी की ज़ुबान से निकल चुके हों। अकूलो जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ ऐसी वही खुद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई थी यानी फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये वो फ़िक्रा है जो अब्दुल्लाह इब्ने अबी सराह के मुंह से निकला था और बाइन ही यही वही इलाही हुई थी और इसी इब्तिला से अब्दुल्लाह बदकिस्मत मुर्तद हो गया था। बस ऐसा एतराज़ अब्दुल्लाह मुर्तद के ख्यालात की पैरवी है जिससे परहेज़ करना चाहिए था। और ये फ़िक्रा यानी अफत दयारो माहलोहा व मकामोहा ये लबीद रज़ी अल्लाह अन्हो जो सहाबी थे उनके शेर का पहला मिसरा है। पूरा शेर ये है, अफत दयारो महलोहा व मकामोहा बेमिनन तअब्बदा गूलोहा फरेजामोहा। इसके ये माने हैं कि मेरे प्यारों के घर मुनहदिम हो गए, उन इमारतों का नामो निशान ना रहा जो आरजी सकूनत की इमारतें थीं और ना वो इमारतें रहीं जो मुस्तकिल सकूनत की इमारतें थीं। दोनों किस्म की इमारतें नाबूद हो गईं और वो इमारतें मना में वाक़े थीं जो नजद की ज़मीन में है। मना दो हैं, एक मना मक्का और एक मना नजद। इस जगह मना नजद मुराद है। और फिर शायर कहता है कि उस सरजमीन के दो शहर जिनमें से एक का नाम गौल था और दूसरे का नाम रजाम था, ये ऐसे मुनहदिम होकर नाबूद हो गए और ज़मीन से हमवार हो गए कि अब इन शहरों की जगह एक जंगल पड़ा है जहाँ वहशी जानवर हिरन वगैरह रहते हैं। ये मानी उस अरबी लफ्ज़ के हैं यानी तअब्बदा के, जो शेर में मौजूद है। तअब्बदा का लफ्ज़ अवाबिद से लिया गया है और अवाबिद जंगली जानवरों हिरन वगैरह को कहते हैं, और अवाबिद का लफ्ज़ अबद से लिया गया है, इसके माने हैं हमेशा जीने वाले। क्योंकि हिरन वगैरह अक्सर अपनी मौत से नहीं मरते बल्कि शिकार किए जाते हैं और दूसरे के ज़रिए से उनकी मौत आती है, इसलिए उनका नाम अवाबिद रखा गया। कौलहू, अगर इंसान के कौल से खुदा का भी तवारुद हो सकता है तो खुदा के कौल और बंदे के कौल में फ़र्क क्या हुआ। अकूलो, अभी हम बयान कर चुके हैं कि कुरान शरीफ इन मानों से मोजज़ा है कि किसी इंसान की इबारत को कुरान शरीफ की एक लंबी इबारत के साथ जो 10 आयत से कम ना हो तवारुद नहीं हो सकता, और इस कदर इबारत कुरान शरीफ की इस दर्जा फसाहत बलागत और दीगर मआरिफ और हकाइक अपने अंदर रखती है जो इंसानी ताकतें इसकी मिसल पेश नहीं कर सकती। इसलिए इबारत कुरानी इस शर्त के साथ कि 10 आयत की मकदार से कम ना हो मोजज़ा है, जैसा कि कुरान शरीफ में इसकी तसरीह मौजूद है। मगर एक फिक्रा जो ज़्यादा से ज़्यादा एक आयत या दो आयत के बराबर हो, इस कदर फिक्रे में इंसान के कलाम का खुदा के कलाम से बज़ाहिर तवारुद हो सकता है मगर फिर भी अंदरूनी तौर पर खुदा की कलाम में बास पोशीदा मारिफ और एक किस्म का नूर होता है, और नीज़ मोजज़े में से एक हिस्सा उसमें मख्फी होता है। जैसा कि इंसान और हिरन में माबहल इम्तियाज़ मजमूई हालत पर नज़र डालकर जाहिर है, लेकिन ताहम हिरन की आँख इंसान की आँख से मुशाबे है, मगर फिर भी इंसान की आँख में बाज़ वो कुव्वतें हैं जो हिरन की आँख में हरगिज़ नहीं। कौलहू, जब अफत दयारो माहिलोहा व मकामोहा का इल्हाम शाये हुआ तब उसके ज़ैल में लिखा गया था कि मुतालिक ताऊन, लेकिन अब बताया जाता है कि जलजले के मुतालिक है। अकूलो, आफत दयार के अजाब का ताउन से ताल्लुक़ रखना इसको ऐन ताउन नहीं बना सकता, मा सिवाय इसके ये कौल के आफत दयार के फ़िक्रे को ताउन से ताल्लुक़ है ये तो इंसान की इबारत है। एतराज़ तब हो सकता कि खुदा ताला की वही में ये लफ्ज़ होता। खुदा ताला की वही तो साफ कहती है कि ये जलजले के मुतल्लिक है। देखो वो इल्हाम जो उसी अखबार अलहकम में दिसंबर 1903 के अखीर में शाये हुआ, जिसकी ये इबारत है कि जलजले का धक्का। फिर 5 माह बाद इसी पहले इल्हाम की इसी अखबार के परचा 31 मई 1904 में दूसरे इल्हाम ने यह तसरीह की कि आफत दयारो महलोहा व मकामोहा। अफसोस, ये कैसा ज़माना आ गया कि दो जगह एक ही अखबार में खुदा का कलाम मौजूद है और एक कलाम दूसरे की तशरीह करता है, उसकी तरफ कोई नज़र उठाकर नहीं देखता और इंसानी अल्फाज को पेश करते हैं, जिसकी गलती का इल्हाम इलाही ज़िम्मेवार नहीं। मुसलमानों की औलाद कहलाकर इस कदर तासुब, खुदा जाने इसका वबाल आइंदा क्या होगा। मा सिवाय इसके हमें इस बात से इनकार नहीं है कि पेश अस वक्त किसी पेशगोई की पूरी हकीकत नहीं खुलती, और मुमकिन है कि इंसानी तशरीह में गलती भी हो जाए। इसीलिए कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं गुज़रा जिसने अपनी किसी पेशगोई के माने करने में कभी गलती ना खाई हो, लेकिन अगर कबल अस वक्त इश्तिहादी तौर पर कोई नबी अपनी पेशगोई के माने करने में किसी तौर की गलती खावे तो इस पेशगोई की शान और इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि रब्बानी पेशगोई एक खारे के आदत और इंसानी नज़र से बुलंद और इंसानी ख्यालात से बरतर है। क्या आप दावा कर सकते हैं कि फ़र्क आ जाता है? अगर यही हाल है तो मैं एक लंबी फहरिस्त ऐसी पेशगोइयों की आपको दे सकता हूँ जिनके समझने में उलुल अज़्म नबियों ने गलती खाई थी, मगर मैं यकीन रखता हूँ کہ آپ بعد اس کے ایسا اعتراض ہرگز نہیں کریں گے اور متنبہ ہو جائیں گے کہ یہ اعتراض کہاں تک پہنچتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب پیشگوئی ظہور میں آ جائے اور اپنے ظہور سے اپنے معنی آپ کھول دے اور ان معنوں کو پیشگوئی کے الفاظ کے آگے رکھ کر بدیہی طور پر معلوم ہو کہ وہی سچے ہیں، تو پھر ان میں نکتہ چینی کرنا ایمانداری نہیں ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ الہام مذکورہ بالا کے یہی معنی ہیں کہ ایک حصہ ملک کی عمارتیں گر جائیں گی؟ بس اس صورت میں یہ الہام اپنے ظاہری معنوں کے روح سے تعاون پر کیوں کر ساتھ آ سکتا ہے؟ اور جس حالت میں ایک حادثے سے عمارتیں گر گئیں تو وہی حادثہ مزداق اس پیشگوئی کا ہوگا۔ کیا تعاون میں بھی عمارتیں گرا کرتی ہیں؟ پھر ماں سوائے اس کے اس پیشگوئی سے پہلے الہام میں جو صرف 5 ماہ پہلے اسی اخبار میں شائع ہو چکا تھا، صاف طور پر زلزلے کا لفظ موجود ہے، اور الہامی لفظ یہ ہیں کہ زلزلے کا دھکا۔ بس اس میں کیا شک ہے کہ اسی اخبار میں ایک آنے والے زلزلے کی خبر دی گئی ہے۔ اب آپ خود منصف ہو کر سوچ لیں کہ الہام افت الدیار و محلوہا و مقاموہا اپنے لفظی معنوں کے روح سے اس زلزلے کی پیشگوئی پر چسپا ہوتا ہے جو پہلے اس سے ذکر بھی کیا گیا، یا تعاون پر؟ ماں سوا اس کے زلزلے کی پیشگوئی کا اس فکرے سے، یعنی افت الدیار کی پیشگوئی سے، جیسا کہ معنوں کی روح سے تعلق ہے، ایسا ہی قرب زمانی کی روح سے بھی تعلق ہے۔ اور وہ یہ کہ افت الدیار کے الہام سے 5 ماہ پہلے صریح الفاظ میں زلزلے کا الہام ہو چکا ہے، اور دونوں پیشگوئیاں ایک دوسرے کے بعد شائع ہو چکی ہیں، یعنی پہلے زلزلے کا دھکا اور پھر افت الدیار و محلوہا و مقاموہا، اور ان دونوں کے اندر تعاون کا کوئی ذکر نہیں۔